प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार। आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि यानी रक्षाबंधन है, बंधन अटूट विश्वास का। रक्षाबंधन का दिन मात्र भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए नहीं है, अभी तो आज का दिन वो दिन है जिस दिन हम प्रण लेते हैं कि अपने समाज की हर बेटी की सुरक्षा करेंगे, साथ ही उनको ऐसा वातावरण उपहार में देंगे जहां वो हर क्षण अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आज आइए हम सब मिलकर अपने मन में ये निश्चय करें कि आज के बाद से हमारे देश की किसी भी बेटी को कोई भी असामाजिक तत्व छूने न पाए। कार्यक्रम परिक्रमा में मैं प्राची प्रिया करती हूं आपका करजोड़ अभिनंदन। आज मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रस्तुत करता है रेनू कटारिया।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून प्राची, एंड वी आर ऑल ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम रेनू कटारिया, डियर लिसनर्स, एंड टुडे विद मी इज माय प्रिय co-host Prachi Priya, and for you we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business, tributes and much more, all these over the next 30 minutes. But first Prachi, let's begin with the news headlines.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर होल्ड्स टॉक्स विद हिज नेपालीज काउंटरपार्ट आरजू राणा देवबा इन न्यू दिल्ली।
स्वास्थ्यकर्मियों और चिकित्सा संस्थाओं की रक्षा के लिए सुरक्षा अधिनियम की मांग करते हुए डॉक्टरों का राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन जारी।
नोटिफिकेशन फॉर फर्स्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी इश्यूड टुमारो।
और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
And today we are going to talk about two beautiful, in fact one beautiful subject and one a very serious subject, Raksha Bandhan and prevention of Mpox, in our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. So Prachi, before we start with all that, why don't we listen to this beautiful song on Rakhi?
Zarur.
बंधन है ऐसा जैसे चंद्र और किरण का, जैसे बजरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है।
सो प्राची, रक्षाबंधन होल्स profound significance as brothers vow to protect their sisters from hardships. The festival is made up of two words, jo ki hame samajh mein aayi gaye hain, raksha and bandhan. So why don't you talk a little about it first?
जरूर जरूर, मैं ये साथ में ही बताना चाहूंगी, जैसे कि कई सारे एक एनेक्डोट्स जो कहते हैं हम लोग, कई सारी कहानियां हैं, तो उसमें से एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है कि महाकाव्य महाभारत में एक जगह भगवान कृष्ण जो हैं वो अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का उपयोग करते समय गलती से अपनी उंगली उनसे गलती से कट जाती है
जी।
तो महाकाव्य में जो एक केंद्रित पात्र है, जो सबसे मुखरित पात्र है, वो है यज्ञसेनी द्रौपदी
जी।
अब वो एक बहुत ही एक मतलब कहते हैं कि जो ग्लैमर जहां पे एक औरत का नजर आता है, वहीं पर वो औरत में जो ममता होती है वो कैसे निकल करके आती है ना। तो जैसे उनका वो हाथ कटता है, यानी उंगली कटती है थोड़ी सी, तो द्रौपदी एकदम घबराती हुई अपने लटकते हुए पल्लू से एक उसका जो सेक्शन है उसको फाड़ती है और तुरंत पट्टी बांध देती है। और उसी पे भगवान श्री कृष्ण उन्हें वचन देते हैं कि मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं द्रौपदी, जब भी आने वाले भविष्य में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा।
एंड सो वी हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन।
एब्सोल्युटली
यस। एंड एज पर द संस्कृत टर्मिनोलॉजी, द ओकेजन मीन्स द टाई और नॉट ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे कि आपने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण अभी हमें दिया है, वेयर रक्षा स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड बंधन सिग्निफाइज द वर्ब टू टाई। It is a day filled with happiness, laughter and the celebration of the unique connection that siblings share. On this day, sisters tie a sacred thread called a rakhi around the wrist of their brothers. In return, brothers pledge to protect their sisters from harm and ensure their well-being. This exchange of vows and gifts strengthens the emotion connection between siblings and reinforces their mutual respect and affection.
बिल्कुल रेनू, और केवल ये जो है आपने जैसे कहा कि siblings है ना, siblings के बीच में इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा विश्वास का पर्व है जो केवल अपने दूद भाई या अपने सगे भाई बहनों तक नहीं सीमित रह गया. ये हम अपनी भाभियों को भी राखी में प्यार से समेट कर भेजते हैं, अपने चाचा चाची अपने भतीजों तक को भेजते हैं, है ना. तो ये बहुत ही एक खूबसूरत विश्वास का, एक अटूट विश्वास का पर्व है जिसे पूरा देश मना रहा है.
बिल्कुल. एंड इट इज ऑल्सो बिलीव, प्राची, एक और बहुत प्यारी सी चीज मैं यहां बोलने चाहूंगी, दैट रक्षाबंधन हैज इट्स ओरिजिन्स इन द प्रैक्टिस ऑफ टेरिटोरियल और विलेज मैरिज, वेयर ब्राइड्स ट्रेडिशनली मैरिड outside of their hometown and the parents did not visit them in their married homes. The festival serves and as an occasion for married women to return to their parents' home for the ceremony. Over time, this festival has acquired a symbolic meaning while retaining its widespread popularity.
बिल्कुल. और आपने जो बात बताई कि पहले क्या होता था कि पहले की जो महिलाएं होती थी उतनी सशक्त नहीं होती थी
जी.
आर्थिक तौर पर जैसे कहते हैं ना कि इकोनॉमिकल जो इमेंसिपेशन है वो औरत का कभी रहा ही नहीं उस वक्त. अब जाकर के हम सशक्त हुए तो इसकी वैल्यू को समझ सकते हैं. तो उस वक्त जब नहीं होता तो कई कोसों दूर कोई ब्याह दी गई लड़की है, अब वो 9 साल में 13 साल में वो वहां से अपने मां बाप को कैसे लौट करके पलट करके देखे बेचारी. तो ये एक सामाजिक रूप से एक इजाद की हुई चीज है कि इसी बहाने कम से कम एक बार भाई दूज पर भाई जाए और रक्षाबंधन पर बहन घर आए, तो एक आना जाना लगा रही है ना.
एंड दिस यू नो द एग्जाम्पल दैट यू गेव ऑफ 9 years or 12 years, इट हैज रिमाइंडेड मी ऑफ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द हिंदू माइथोलॉजी वेयर द गॉड यम and Yamuna had some you know rivalry.
Bilkul.
And unhone 12 saal jo hai ek dusre ki shakal nahi dekhi thi. So river Ganga pacified Yam ki aapko jo hai unke ghar jana chahiye. And after 12 years the siblings met, that is Yam and Yamuna, and also since then we have been celebrating Rakhi.
Kitni khoobsurat baat batayi. Bilkul.
So now moving on from this beautiful and very holy festival of Rakhi, Prachi, let us move on to a very important and very serious discussion that we are going to talk about, is the prevention of mpox. So, more than 4 years since COVID-19 was declared a pandemic by the World Health Organization or WHO in March 2020, fear of another mass outbreak looms large. The WHO on August 14 declared the current upsurge of mpox or monkeypox in Central Africa as a global emergency requiring urgent action. And this is actually giving me goosebumps because we haven't forgotten what coronavirus did to the entire world and what COVID-19 got to us. So if the WHO is saying that monkeypox or mpox is another global emergency, I think this is a very serious concern.
Bilkul.
So the global concern for the virus grew as it spread to other African countries, and within no time, the deadly strain of mpox clade 1B crossed the African continent to reach Sweden, Pakistan and other countries. It has come so close to us. Monkeypox could become a full-blown crisis now because it is spreading to densely populated regions in Asia. Cases in India, Pakistan and China could take a turn for the worse due to the amount of population in these countries that would make this disease very tough to contend in case of a full-blown pandemic. Yes.
बिल्कुल. और इससे इसके बारे में हम आगे बताएं उससे पहले मुझे लगता है कि कुछ बातें मुझे एक प्राथमिक तौर पर अपने श्रोताओं को बतानी चाहिए. उसका दायित्व है हमारे ऊपर कि एमपॉक्स चेचक के समान एक वायरस परिवार से संबंधित बीमारी है. ये आमतौर पर जैसे कि छाले या घावों के कारण बनता है जो 2 से 4 सप्ताह तक रह सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके की चीजें जैसे खांसी हो गई, जुकाम हो गया, नजला हो गया, हमें ऐसे रहता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं. बट नहीं, बिल्कुल भी हम इसे दरकिनार हमें नहीं करना चाहिए. ये बीमारी जो है बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा और ग्रंथियों में सूजन के साथ शुरू हो सकती है, जिसे कई बार हम नजरअंदाज करते जो हमें नहीं करना चाहिए. छाले चेहरे, हथेलियों, पैरों के तलवों में, कमर में है ना, और इस तरीके के गूदा क्षेत्रों में हो सकते हैं, मुंह में भी हो सकते हैं, गले और आंखों पर भी दिखाई दे सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको इसे इग्नोर नहीं करना है।
एंड ऑल्सो यू नो वॉट प्राची, इन रिस्पॉन्स टू द WHO's वार्निंग, बोथ सेंट्रल, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट आर कंट्री इंडिया, बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव स्प्रंग इन टू एक्शन। Principal Secretary to Prime Minister Dr. P.K. Mishra chaired a high-level meeting yesterday to review the status of preparedness for mpox in the country and related public health measures. He said Prime Minister Narendra Modi has been continuously monitoring the mpox situation. During the meeting, Dr. Mishra directed states to enhance surveillance and take effective measures for prompt detection of cases. He further directed that the testing laboratories need to be geared up for early diagnosis. जैसे कोविड 19 के टाइम पे हुआ, हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है।
बिल्कुल, कोविड की तुलना में धीमी गति से फैलता है वैसे तो ये एमपॉक्स, संक्रमित लोगों के अगर आप निकट जाए, उनसे संपर्क बनाए तो फैलता है, लेकिन किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ आमने सामने आपको बैठने से थोड़ा परहेज करना चाहिए, या फिर त्वचा से त्वचा का संपर्क या फिर लार से त्वचा का संपर्क भी जो है वो जोखिमों के कारकों में से एक हो सकता है।
राइट, एंड हियर डॉक्टर पीके मिश्रा हैज ऑल्सो सेड दैट द प्रोटोकॉल फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज शुड बी disseminated on a large scale. He further emphasized an awareness campaign amongst the healthcare providers regarding the signs and symptoms of the disease and the need for timely notification to the surveillance system. So here, not only the healthcare providers, I think it is the general public and all of us who should be very much educated and aware of the, you know, kind of mpox symptoms that are going to be there, and we need to be talking about it in wherever, in our gatherings that we meet, so that, you know, it's more spread around and people do talk about it and we take time.
बिल्कुल बिल्कुल रेनु, सबसे बड़ी बात यही है कि हम किसी भी तरीके से नजरअंदाजी ना करें, है ना, क्योंकि ये जो बीमारी है वो संक्रमित जानवरों जैसे कि बंदर हो गए, बंदर की कुछ प्रजातियां होते हैं, या सड़े हुए जानवरों के काटने से या खरोंच से भी लोगों में फैल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कि जो भी नॉन वेजिटेरियन ईटर्स हैं, जो मांसाहारी हैं, वो होटल्स में या कहीं भी जो खाते हैं उसको लेकर के थोड़े परहेज की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे जानवरों की, अब भाई तहकीकात तो कोई कर नहीं पाता, लेकिन ऐसे जानवरों की जब खाल मतलब उतर जाती है और उसके बाद वो अगर मांस अच्छी तरीके से नहीं पका है तो वो बहुत हानिकारक हो सकता है। तो इससे हमें बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए और इस तरीके की बीमारियों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
एंड येस, वंस अगेन वी ऑल शुड बी टेकिंग केयर एंड टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स, एज बोथ द ICMR, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड रिव्यूइंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स। And now it is time for us to go to our regional correspondents, Prachi.
Bilkul.
So first we are going to take a short report on the Sundarbans in West Bengal. The Sundarbans is set to get the status of the second largest tiger reserve in the country with implementation of a sustainable development program. More from our Kolkata correspondent.
The World Heritage Sundarbans is set to get the status of the second largest tiger reserve in the country with the launch of a sustainable development program for the Sundarbans in January 2025 in collaboration with the World Bank. The state cabinet has already given its approval in this regard. The planned project, which will cost ₹4,100 crore, will see the World Bank bearing 70% of the expenses and the state government covering the remaining 30%. Which amounts to ₹1,230 crore. Expected to be completed by 2029 and 2030, the project has been termed as Sustainable Harmonizing Ocean Resources and Economy. It will strengthen the vulnerable embankments across the islands against floods and cyclones. The present forest area of 2585.89 square kilometers is covered under Sundarban Tiger Reserve. With the implementation of the new project, the reserved forest area will be 3629.57 square kilometers. Three ranges of Raidighi, Matla and Ramganga in South 24 Parganas are being brought under the extended area. Sundarbans currently has 101 tigers and is identified as the 7 11th largest tiger reserve in the country. If the three new forest areas are added, it will be the largest in the country. There are currently 55 such tiger reserve forests across the country. At present, the Nagarjuna Sagar in Andhra Pradesh is the largest tiger reserve forest in India. However, the small fishermen organizations have expressed concern over this announcement. As a result of the project, the livelihood of marginal fishermen will suffer, they alleged. But the forest department has dismissed such allegation. Sushmita Mondol, Akashvani, Kolkata.
And now, dear listeners, from Kolkata, we are moving to Tamil Nadu. In Tamil Nadu, dark chopals were organized in various places, including Trichy Postal Division, Ammanapuram Panchayat in Tiruchendu Division, and Ayaneri Village in Kovilpatti Division. The activities included awareness rallies, distribution of pamphlets and postal schemes, guest lectures to create awareness on postal schemes, Aadhaar Updation Correction Camp and Postal Savings Account Opening. So here we have more from our correspondent.
Indian Postal Services continues to give yeoman service to citizens, especially rural people, where elders wait for money orders, letters from near and dear ones. Dark Chopal spreads its wings to rural areas to disseminate information on postal services to all. Trichy Regional Postal Department has made necessary arrangement to make Dark Chopal success by ensuring the participation of local dignitaries like primary school teachers, primary health officers, local representatives, etc. As this movement, which was started in July, ends next month, youth are engaged to create awareness among rural people to create links between the residents and government, thereby reducing barriers such as distance and accessibility. Shanti Ramesh reporting for Parikrama from Akashvani, Tiruchirappalli.
And Assam Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma on August 15th announced one new national park for the state, delighting conservationists and communities alike. Chikkanajhar Johola National Park is the 8th national park of Assam and 3rd in the Bodo Territorial Region. More from our correspondent.
In his Independence Day address in Guwahati, Chief Minister Hemanta Biswa Sarma renamed the Rifu Sirang Elephant Reserve Forest as Chikkanajhar Johola and designated it as National Park. This 391 square kilometer new park falls in the Kokrajhar and Sirang districts of BTR region. It is the home to saltries, elephant, peacock, rare golden monkeys, tiger, leopard, wild buffalo, deer, forest poultry, otter, snakes and over 300 species of butterflies apart from 12 globally threatened species. Situated in the foothills of Bhutan Himalaya, this forest is of tropical semi-evergreen type with largely flat terrain. There is also a large wetland called Mach Bhandar inside this national park. This new national park also serves as a corridor linking Manas National Park, Boksar Tiger Reserve of West Bengal and Phibso Wild Life Sanctuary of Bhutan. Aminul Hazuddar, Akashvani News, Guwahati.
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
Azadi ka Amrit Mahotsav.
Azadi ka Safar.
India's glorious fight for freedom is one of the greatest struggles the modern world has ever witnessed. In today's episode, we will briefly explore the lives of two great Indians from the southern part of our country, Dheeral Satyamurthy and P. Krishna Pillai.
Today is the birth anniversary of the brave heart Sundara Shastri Satyamurthy. An orator par excellence, S. Satyamurthy hailed from Tirumayam in the princely state of Pudukottai of the present-day Tamil Nadu. Born on 19th of August 1887, he had a traditional upbringing. After completing education from Madras, he practiced as a lawyer for a brief period. But the quest for freedom made him become a rebel with a cause.
Endru madiyum engal adimayin mogam.
He actively took part in the protests against the colonial rulers, be it partition of Bengal, Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre or Simon Commission. Satyamurthy was at the forefront.
When Satyamurthy became the mayor of Madras in 1939, the city was facing acute water scarcity. A visionary politician, Satyamurthy pressed upon the need for building a reservoir in Pundi, about 50 kilometers west of the city, to augment the water supply. Today also, it remains the only reservoir of water for Chennai. Satyamurthy was also a champion of fine arts, especially Carnatic music. He was instrumental in setting up the Music Academy of Madras.
He actively participated in the Swadeshi movement and the Quit India movement and was arrested by the British in 1942. Satyamurthy was put on trial and was sentenced to rigorous imprisonment in Amravati jail. During the journey, he hurt his spinal cord and eventually succumbed to injuries on 28 March 1943 at General Hospital, Madras. Sundara Shastri Satyamurthy was also the political mentor of senior Congress politician K. Kamaraj.
Today is also the birth and death anniversary of P. Krishna Pillai, a revolutionary freedom fighter associated with Vaikama Satyagraha, Salt Satyagraha and Guruvayur Temple movement.
Although one of the founders of the left movement in the present-day Kerala, Krishna Pillai began his career in the Indian National Congress, first as a Gandhian and then as a Congress socialist. He was an active volunteer of Vaikam Satyagraha for Temple Entry 1924, which was led by E.V. Ramasamy. Vaikam Temple Entry movement was against untouchability and caste discrimination. The success of the long-drawn protest led to the opening of temples to all the people of Hindu religion.
He took part in the Salt Satyagraha March from Kozhikode to Payyanur in 1930 and braved the brutal blows of the British to hold afloat the tricolour in true Gandhian style. In 1931, he became the first non-Brahmin to ring the temple bell of the Guruvayur temple.
By 1936, Krishna Pillai, who until then had initially concentrated his political activities in the Malabar region, expanded it to Cochin and Travancore. In 1938, he organized the famous worker strike in Allapura, which turned out to be a great success and an inspiring factor behind the Punnapura Vailar struggle of 1946. He was a great organizer who succeeded in reaching out to the oppressed masses of Kerala and making them aware of their rights.
At the time of his untimely death, on August 19, 1948 of snakebite, Krishna Pillai was perhaps the most familiar face in the homes of the laborers and peasants of Kerala. A leader known for his courage and dynamism, humaneness and uncompromising stand against exploitation and oppression. That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. See you in the next episode tomorrow.
And some news from the business world. India's equity benchmark indices Sensex and Nifty ended flat in lackluster trading session amid mixed global cues. At the closing bell, the BSE Sensex shed 12 points or 0.02% to close at 80,425, while the NSE Nifty added 32 points or 0.13% to settle at 24,573.
और अब समय आ चुका है कि हम आपको ले चलें उन व्यक्तित्वों की याद में जो वाबस्ता हैं आज के दिन से। आज भारतीय फिल्म के प्रसिद्ध संगीतकार मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी की पुण्यतिथि है। खय्याम बॉलीवुड के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया, मगर उनके गीत और उनके जो धुन हैं वो अमर हैं। फिल्मों में करीब 40 साल काम किया और 35 फिल्मों में संगीत दिया। उन्होंने पहली बार फिल्म हीर रांझा में संगीत दिया, लेकिन मोहम्मद रफी के गीत अकेले में वो घबराते तो होंगे से उनकी पहचान मिली। और हीर रांझा फिल्म का क्योंकि जिक्र किया है तो उसमें कितने अच्छे अच्छे गाने, मिलो न तुम तो हम घबराए, है ना, है ना,
लवली सॉन्ग,
बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही फिल्म शोला और शबनम में भी उन्होंने संगीतकार के रूप में अपने आप को स्थापित कर दिया था। खयाम अपने किसी पुराने साक्षात्कार में एक बार बोले कि पाकिजा की जबरदस्त कामयाबी के बाद उमराव जान का संगीत बनाते समय उन्हें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि भाई ऑलरेडी एक माइलस्टोन स्थापित कर दिया है तो फिर उसके बाद एक नया वैसा कैसे बनाएं। तो उन्होंने कहा कि पाकिजा और उमराव जान की पृष्ठभूमि क्योंकि एक जैसी थी, पाकिजा कमाल अमरोही ने बनाई थी और अब उन्हीं के जैसा और बल्कि एकदम बराबर बराबर में एक और फिल्म लेकर के आनी थी। तो खयाम ने फिर कहा आगे कि लोग पाकिजा में सब कुछ देख सुन चुके थे पहले से ही, ऐसे में उमराव जान के संगीत को खास बनाने के लिए मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया। आखिरकार खयाम की मेहनत रंग लाई और सन 1982 में रिलीज हुई मुजफ्फर अली की उमराव जान ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ऐसी ही एक बेजोड़ कहानी को स्मिता पाटिल और नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया था जिसका नाम था बाजार। पेश करती हूं बाजार फिल्म से एक गीत जिसमें संगीत खयाम ने दिया है और बोल हैं उर्दू के मशहूर सुखनवर मीर तकी मीर के।
And today we are paying tributes to Utpal Dutt, who was an Indian actor, director and writer-playwright. He was primarily an actor in Bengali theatre, where he became a pioneer figure in modern Indian theatre, where he founded the Little Theatre Group in 1949. He also acted in over 100 Bengali and Hindi films in a career spanning 40 years. He has worked with Hrishikesh Mukherjee's breezy Hindi comedies such as Golmaal, Rang Birangi, and talking about awards, Prachi, he received National Film Award for Best Actor in 1970 and three Filmfare Best Comedian Awards. In 1990, the Sangeet Natak Academy, India's National Academy of Music, Dance and Theatre, awarded him its highest award, the Sangeet Natak Academy Fellowship for Lifetime Contribution to Theatre. But I think Utpal Dutt is mostly remembered for his comedy dialogues and scenes from the movies Golmaal, Naram Garam, Kisi Se Na Kehna. So let's listen in here to some of his comedy scenes from these movies.
Bade babu, aapko tajrube ka logon ki file nikaliye. Lagta hai unhi mein se kisi ko lena padega. Ki nahi, generation se mujhe badi mayusi hui bade babu. Aadho ko to moochi nahi. Baaki aadho ke libaas dekhe, baatein suniye to sar mein khoon chadh jata hai. अब बस एक ही बाकी है, मैं उसे भी देख लेता हूँ। आप एक्सपीरियंस लोगों की फाइल निकालिए।
और साथ ही आज हम याद करेंगे छायावाद के तृतीय उत्थान के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आरसी प्रसाद सिंह को उनकी जयंती पर। आरसी प्रसाद सिंह भारत के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकिकार थे। इन्हें जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। बिहार के श्रेष्ठ कवियों में इन्हें गिना भी जाता है। आरसी प्रसाद सिंह हिंदी और मैथिली भाषा के ऐसे प्रमुख हस्ताक्षर थे जिनकी रचनाओं को पढ़ना हमेशा ही दिलचस्प रहा है। श्री सिंह की मैथिली कविता स्वदेश वंदना का ये अंश मैं आप तक पहुंचाती हूं। हे जन्मभूमि भारत, हे मातृभूमि भारत, हे पुण्य भूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, निष्दिन अहाँक अविचल हम अर्चना करै छी, पावन अहाँक रूप हम वंदना करै छी, तकरे जन्म जन्म हम कामना करै छी, हे जन्मभूमि भारत हम वंदना करै छी। यानी कवि कह रहे हैं कि आपके अविचल रूप की मैं अर्चना करता हूँ, पावन रूप की अर्चना करता हूँ और जन जन मैं इसी भारत की भूमि पर पैदा हूँ, फिर से पैदा हूँ, उसकी मैं कामना करता हूँ और मैं हे मातृभूमि आपकी वंदना करता हूँ।
जी बिल्कुल। And today we are also paying tributes to Jaan Nisar Akhtar, who was an Indian poet of Urdu ghazals and names and a part of the progressive writers movement, who was also a lyricist for Bollywood. Notable among them were songs which he has written, Prachi, from his breakthrough film A.R. Kardar's Yasmin, Aankhon Hi Aankhon Mein in Gurudat CID aur Na Jaane Kitne Hi Sare Gaane, jinke baare mein hum baat karne wale hain. But the latter, The Ashes of Heart, was a poetry collection for which he was awarded the 1976 Sahitya Akademi Award in Urdu by Sahitya Akademi India's National Academy of Letters. But here, let's listen into this beautiful medley, all songs written by Janasar.
बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में।
और अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो प्राची प्रिया और रेणु कटारिया को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।